ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೀರಾದೇವಿ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. तो आज से हम श्री उपदेशामृत का तीसरा श्लोक पढ़ेंगे. पहला श्लोक का विषय था षड वेग, दूसरे श्लोक का विषय था षड दोष, और इस तीसरे श्लोक का विषय है षड गुण. वो छह चीजें जो हमारे भक्ति के लिए बहुत लाभदायक होती है. तो आइए इस श्लोक को हम पढ़ते हैं. उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्मात् प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतः वृत्ते षड्भिः भक्तिः प्रसिद्ध्यति. उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. उत्साह निश्चया धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. बोलिएगा. उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. माताजी, उत्साहात उत्साह से निश्चयात निश्चय से धैर्यात धैर्य से तत्तत् कर्म भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य प्रवर्तनात संपन्न करने से संग त्यागात अभक्तों की संगति छोड़ने से सतह महान पूर्ववर्ती आचार्यों का वृत्ते पद चिन्हों का अनुसरण करने से षड्भिः इन छहों से भक्ति ही भक्ति प्रसिद्ध्यति अग्रसर होती है या सफल होती है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में छह सिद्धांत अनुकूल होते हैं। एक, उत्साही बने रहना। दो, निश्चय के साथ प्रयास करना। तीन, धैर्यवान होना। चार, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। पांच, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा छह, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये छहों सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता की प्रति के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो जैसे यहां चार्ट में बताया है, ये छह चीजें जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हैं, वो छह चीजें हैं। षड्भिः भक्तिः प्रसिद्ध्यति। प्रसिद्ध्यति अर्थात जो हमें भक्ति की ओर अग्रसर कराती हैं या सफल करने में मदद करती हैं। उत्साह, निश्चय, एक रहेगा ठीक है। उत्साह, निश्चय, तेरे तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्यागात, पांचवा नीचे लाइन करके नीचे, हाँ हाँ, संग त्यागात। संग को त्यागना इतना जरूरी है कि इसको यह भी त्याग दिया था। तो ये छह है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन, जन संग त्याग, और सतोवृत्ति। तो ये छह चीजें हमारे भक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो आज कौन पढ़ेंगे? जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है कौन पढ़ेंगे? थोड़ी जोर से ताकि सभी सुन पाए।
भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यापारिक सक्रियता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। यहाँ विलास चिंता शून्य ज्ञान कर्मादिनानुकूल्येन प्रश्नादीन शीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति इस तरह की जानने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए और सकाम कर्म निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। जो ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता से रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखा रहे हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता नहीं है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्कृति व्यवधानात्मक भौतिकतावादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। किंतु भक्तिमय सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ संसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अभी तो मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। श्री
तो यहाँ भक्ति की परिभाषा दी गई है। अब ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, अन्याभिलाषिता शून्यम, और इसके बारे में बड़े गहराई में आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे। शायद इसकी चर्चा प्रारंभ हो चुकी होगी, है ना? चर्चा चल रही है ना? तो ये इसलिए यहाँ इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देंगे। वहां तो काफी गहराई में चर्चा श्री प्रभुपाद करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। इतना कहना काफी है यहाँ कि ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र है। ये भी चर्चा की गई थी ना, परिभाषा सूत्र, जिस सूत्र के आधार पे सारा ग्रंथ है, निर्भर है, जिसे हरेक शास्त्र में ऐसे श्लोक होते हैं जिन्हें परिभाषा सूत्र कहते हैं, जो सारे ग्रंथ की परिभाषा जिसमें पाई जाती है। तो भक्ति रसामृत सिंधु का विषय क्या है वो इस एक श्लोक में कहा गया है। भक्ति किस तरह की भक्ति, इसका वर्णन यहां पर है। काफी बड़ा विषय है, परंतु प्रभुपाद जी यहां महत्वपूर्ण बात करते हैं। कहते हैं कि भक्ति भावनात्मक चिंतन नहीं है और काल्पनिक उर्मी भी नहीं है। भक्ति क्या है फिर? इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ये इसका सार है। तो जब हम भक्ति कहते हैं, कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे आप लोग केवल एक पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्ण हरे राम कहते हैं, कुछ काम तो करिए, कुछ तो कीजिए आप। वो सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है निष्क्रियता, परंतु ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब है सक्रियता, क्रियाशीलता। जहां भक्ति मतलब प्रेम, और जहां प्रेम होता है वहां सेवा होनी चाहिए। सेवा मतलब क्रियाशीलता, बैठे बैठे सेवा नहीं हो सकती। अगर हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और आप कहते हैं मुझे पानी पिलाइए, हम कहते हैं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी बहुत सेवा करना चाहते हैं, लेकिन पानी वहां पड़ा है, उठिए ले लीजिए और बैठ जाइए, हम उठना नहीं चाहते। तो किस प्रकार का प्रेम हुआ, किस प्रकार की भक्ति, किस प्रकार की सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब भक्ति शब्द की परिभाषा या अनुवाद अंग्रेजी में किया तो उन्होंने केवल डिवोशन नहीं किया, उन्होंने डिवोशनल सर्विस, सर्विस अर्थात सेवा। तो भक्ति की का अनुवाद या उसकी परिभाषा प्रभुपाद जी ने कैसे किया, प्रेममयी सेवा। क्योंकि सेवा के बिना भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति मतलब प्रेम है और प्रेम में सेवा आवश्यक है और सेवा में क्रियाशीलता आवश्यक है। तो भक्ति जैसे प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं यहां पर, ये एक अनुशीलन है, एक प्रकार का अनुशीलन। और ज्यों ही हम अनुशीलन शब्द का प्रयोग करते हैं तो तुरंत हम क्रियाशीलता की बात करते हैं, सक्रियता। सक्रिय होना ही चाहिए, नहीं तो अनुशीलन कैसे होगा। तो तरह तरह के कार्य होते हैं जो भक्ति में किए जा सकते हैं, जो अज्ञानी हैं या जो गलत समझते हैं भक्ति को या आध्यात्मिक मार्ग को, वो सोचते हैं कि केवल ध्यान में बैठना ही आध्यात्मिक जीवन है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हम गलत काम करते हैं कम से कम वो तो ध्यान में बैठने से बंद हो जाएंगे, लेकिन ये एक नकारात्मक विचार है कि हमें खराब कामों से, गलत कामों से बचने के लिए ध्यान में बैठना चाहिए। तो ठीक है, गलत काम से थोड़े समय के लिए कम से कम अब के लिए तो बच जाएंगे, परंतु सक्रिय रूप से कोई कार्य करना भगवान की सेवा के लिए, ये सकारात्मक आध्यात्मिक जीवन है जिससे कि दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो किस प्रकार के कार्य भक्ति में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके पहले चार्ट तरह घुमाएंगे, इसके नया वाला है उसका। तो अब तक जो चर्चा हुआ है इन दो परिच्छेदों में, इसके सार रूप में यहां चार्ट में हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात, ये भक्ति की चर्चा हो रही है। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है। दूसरी बात, इसके विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। उर्मी मतलब आनंद, एक्सटेसी। भाव लहर आनंद की लहर, इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक सक्रियता है। भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है, अनुशीलन है जिसका अभिप्राय सक्रियता है, निष्क्रियता नहीं। तो बस इसी तात्पर्य के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को उठाकर यहां चार्ट में दिए हैं ताकि इसका सार आप समझ लें। भक्ति सभी व्यर्थ संसारी कार्यकलापों को रोकती है और साथ साथ सार्थक भक्ति कार्यों में लगाती है। ठीक है, लिख लिया आपने। हाँ, तो आगे पढ़िए। श्री प्रहलाद महाराज,
श्री प्रहलाद महाराज करते हैं। 69 विधियां इस प्रकार है। पहला, परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। दो, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। तीन, भगवान का स्मरण करना। चार, भगवान के चरणों की सेवा करना। पांच, अर्चा विग्रहों की पूजा करना। छह, भगवान को नमस्कार करना। सात, भगवान के दास रूप में कार्य करना। आठ, भगवान के साथ मित्रता करना। नौ, भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनाधिकृत पुरुषों की बात।
अच्छा ठीक है, एक मिनट है, तो इसको जरा घुमा लेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने बताई हुई नौ प्रकार की नौ भक्ति के अंग कौन से हैं, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। भक्ति की नौ विधियां, नव विधा भक्ति कहते हैं इसे। भगवान को केंद्र में रख के उनके बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना आदि। और इनका मतलब यहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बतलाया है। साख्यम नहीं, सख्यम है ये। सख्यम, साख्यम नहीं, सख्यम। तो ये श्लोक तो सभी को कंठस्थ है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वाला। कितने भक्तों को कंठस्थ है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वाला श्लोक? ठीक है, जिन कितनों को स्मरण नहीं है, जिनको नहीं है तो वो आप याद कीजिए। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, तो आगे पढ़िए। अब श्रवण का क्या अर्थ है और नवविधा भक्ति कैसे की जानी चाहिए वो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वो आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ेंगे। उदाहरण सबके, जिन्होंने अपने जीवन को इन नौ विधियों को अपना के सफल बनाया। ठीक है, संक्षेप में कर लेते हैं। श्रवणम परीक्षित महाराज, कीर्तनम सुखदेव महाराज, स्मरणम प्रहलाद महाराज, अर्चनम पाद सेवनम लक्ष्मी देवी, अर्चनम पृथु महाराज, वंदनम अक्रूर, दास्यम विमान, सख्यम अर्जुन, आत्मनिवेदनम बलि महाराज, और सारे नौ के नौ अम्बरीश महाराज। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़िए।
दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनाधिकृत पुरुषों की बातें कान से न हो, अधिको योग्य व्यक्ति के पास जाए। जैसा कि भगवद गीता चौथी श्लोक में संस्कृति की गई है, सद विधि प्रणी पाते बड़ी प्रश्नीय मनुष्य है, ज्ञान ज्ञान न तत्व दर्शन। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनित भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सीधा व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। मुंडक उपनिषद में और भी संस्कृति की गई है, तद विज्ञानार्थम सब गुरुमेव अभिगच्छे। उस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस प्रकार विहित भाव से दिव्य गुरुय ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया, ब्रह्मांड ब्रह्म के कौन भाग चैतन्य चरितामृत पद्यविलास अध्याय 19 श्लोक 151।
ठीक है, तो यहाँ क्योंकि श्रवणम से भक्ति की भक्ति आरंभ होती है, इसलिए प्रभुपाद जी यहां बतला रहे हैं कि श्रवणम जब गुरु से करते हैं सबसे पहले वहां से शुरू होता है सब कुछ। और जब हम तत्त कर्म प्रवर्तनात इस विधि पर या इस गुण पर आएंगे तब इस बात की चर्चा और होगी, परंतु गुरु का आश्रय लिए बिना हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। और इसलिए किस भाव में भक्ति, किस भाव में गुरु के पास जाना चाहिए और क्या सौभाग्य हमारा होता है जब ऐसे गुरु की हम प्राप्ति करते हैं, इसका उल्लेख भी यहाँ पर प्रभुपाद जी ने किया है। हाँ, आगे बढ़िए।
सारे जीव जो स्वभाव से आनंदमय है उनके लिए यह भौतिक जगत एक बंदी ग्रह जैसा है। यह वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के सागर रूपी बंदी ग्रह से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्यपूर्वक उससे सुनता है तो वह भक्ति पथ का अनुसरण करने लगता है। ऐसा शुभ अवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के इस शुभ अवसर का लाभ उठाता है तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग मिल जाता है।
हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस जीव को ऐसे सद्गुरु के शरण प्राप्त होते हैं वो कितना भाग्यशाली है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं रूप गोस्वामी को, जिसे रूप शिक्षा कहते हैं। तो रूप शिक्षा के दौरान इस बात पे काफी विस्तार से महाप्रभु चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कितने तरह तरह के जड़ और चेतन यहाँ पर वस्तुएं हैं, उसमें चर और अचर कितने हैं, फिर तरह तरह के विभाजन करते करते ये विषय काफी लंबा है। फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में इन लाखों लाखों जीवों में से बिरला एक ही इतना भाग्यशाली होता है कि उसे भक्तों का संग मिलता है जिससे कि वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो ये बहुत ही अनमोल अवसर है जीव के लिए अपने बद्ध अवस्था से मुक्त होने के लिए। तो इसलिए हरेक जीव को चाहिए कि इतने लाखों लाखों जन्म बिताने के बाद, अनेक ग्रह और लोकों में ब्रह्मांड भर में घूमने के बाद, उसे यहां भक्ति करके अपने जीवन की समसिद्धि को प्राप्त करने का अवसर मिला है तो ये अवसर बिल्कुल खोना नहीं चाहिए, अर्थात भक्ति को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। तो इसके बाद अभी तात्पर्य में प्रभुपाद जी उत्साह जो पहले गुण है छह गुणों में से, इसका वर्णन प्रभुपाद जी करेंगे। हाँ, पढ़िए।
सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थाखिलं चेष्टा भक्ति रसामृत। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलाप करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवद गीता 9.9 अध्याय 34 श्लोक में कहते हैं, मया तद इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ इस समय हम डिक्टा फोन जो कि बोलने लिखने का यंत्र है, बोलकर लिखने का यंत्र है, इसका उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकतावादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावनाभावी साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निस्संदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। इस यंत्र के सारे भाग जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित है, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि जल अग्नि वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतःक्रियाओं से बने हुए हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मत्स्थानि सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि क्योंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिससे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंध कृष्ण संबंध उत्तम वैराग्य मुख्य है। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं है, अभी तो आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यावहारिक कर्म है।
ठीक है, तो इन 2-3 परिच्छेदों में प्रभुपाद जी उत्साह इस महत्वपूर्ण गुण का वर्णन करते हैं, और वो शुरुआत इस बात से करते हैं कि जिसे भक्ति करने का अवसर मिला है वो तो बहुत ही भाग्यशाली है और इस अवसर का लाभ उसे उठाना चाहिए पूरी तरह से, और अगर उसे सफल होना है इस प्रयास में तो उसे उत्साही होना ही चाहिए। उत्साह हुए बिना वो सफल नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, बिना उत्साही हुए कोई भी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां कहते हैं उत्साह मतलब कार्य, परंतु किसके लिए, किन के लिए कार्य? कृष्ण के लिए। कृष्णार्थाखिल चेष्टा, कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा। अर्थ मतलब यहां पर उनके लिए हेतु, कृष्णार्थ मतलब कृष्ण के लिए, अखिल चेष्टा तो हमारी सारी चेष्टा, हमारा सारा प्रयास केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। अगर ये हमारी भावना रहती है तो फिर ये इसे उत्साह कहते हैं। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं अपनी शक्तियों के द्वारा, कोई भी वस्तु भगवान से स्वतंत्र या भिन्न नहीं है, और एक ऐसे सद्गुरु के शरण में जाकर हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से दुनिया की हर एक वस्तु को अनुकूल रूप से हम भगवान की सेवा में लगाएं। और उदाहरण प्रभुपाद जी क्या देते हैं? डिक्टाफोन का। क्या उदाहरण है डिक्टाफोन का?
बोल के लिखने का कार्य ले रहे हैं, जो कि किसी साइंटिस्ट ने इसमें बनाया था, इसलिए ही बनाया था, मतलब उसको भक्ति में।
वैसे देखा जाए तो ये डिक्टाफोन इसी प्रकार का एक मशीन है, यंत्र है, जड़ पदार्थों से बना हुआ है, भूमि आप नल जलवायु इत्यादि खम। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसका संशोधन किया, इसका आविष्कार किया, तो उसने ये सोचकर नहीं बनाया जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के भक्त इसका इस्तेमाल करेंगे। उसने इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए किया है। एक जगह श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भोगवादी जो है, भौतिकवादी लोग हैं, उनका काम है परिश्रम करके ये आविष्कार करना, तरह तरह की चीजों का आविष्कार करना, और भक्तों का काम है इन चीजों को लेके आराम से भगवान की सेवा में लगा देना। तो ये लोग परिश्रम करते जाएं, नए नए चीजें बनाते जाएं, और भक्त क्या करेंगे, लेंगे, सेवा में लगाते जाएंगे। तो हालांकि उस डिक्टाफोन के इंजीनियर, जिस व्यक्ति ने उसे बनाया, जिसने उसका आविष्कार किया, उसके मन में ये भावना नहीं थी, फिर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मैं ये डिक्टाफोन का प्रयोग कर रहा हूं कृष्ण कथा के लिए। और हालांकि उस व्यक्ति ने कृष्ण भावना में ये आविष्कार नहीं किया, फिर भी अगर विश्लेषण किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि सब कुछ कृष्ण के अंतर्गत ही है। क्यों? इस माइक्रोफोन को बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता थी। एक बुद्धि, जो आविष्कार करने वाला है, जो वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, उसकी बुद्धि, और दूसरा जो सामग्री है, जो पदार्थ है। तो दोनों कहां से आती हैं? कृष्ण से आती हैं। इसलिए माइक्रोफोन, डिक्टाफोन, जो भी कुछ है, ये कृष्ण के शक्तियों के बाहर नहीं है। सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। इसलिए मत्स्थानि सर्वभूतानि। और जो व्यक्ति इस प्रकार से समझ लेता है कि कुछ भी भगवान की शक्ति से भिन्न नहीं है, और हर एक वस्तु का इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में अनुकूल रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो भक्त कहलाता है। और ऐसे दृष्टि से जो कार्य करता है वो भक्त है। और अगर ऐसा कार्य बड़े उत्साह से, बुद्धिमत्ता से किया जाता है तो उसे उत्साह कहते हैं। प्रश्न ये है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर एक वस्तु का अच्छी तरह से प्रयोग हम कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो एटम बॉम्ब का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमने कहानी पढ़ी थी, याद आ रहा है। वो अंत तक वो मामला क्या है समझ में नहीं आता, अंतिम लाइन में पूरा मामला समझ में आता है कि सारे कहानी में हुआ क्या। एक व्यक्ति जो है चुपके एक ऐसे जहाज में बैठता है जो सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करता है। तो जैसे कभी कभी रेलगाड़ी में बिना टिकट के आदमी घुस के बैठ जाता है ना, तो ये आदमी भी ऐसे स्पेसशिप में, अंतरिक्ष में चलने वाले यान में बैठ गया, घुस गया किसी तरह से। तो जब अंतरिक्ष में वाहन या यान चले गया, तो अभी तो वापस उतारने का कोई सवाल नहीं था, तो बाहर आया, सबके साथ मिलने बैठने उठने बैठने लगा। वहां कप्तान के साथ उसकी जो वार्तालाप हुई, जो अन्यों के साथ वार्तालाप हुई, और फिर अंत में जैसे वार्तालाप चलता है, कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अंत में भी पता चलता है कि पृथ्वी के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, दुनिया के सारे पागल लोगों को उस रॉकेट में डाल के सब अंतरिक्ष में भेज दिया था, है ना। तो उनको सब बिठाकर ताकि पृथ्वी में शांति हो, पूरे अंतरिक्ष में उनको ब्रह्मांड में कहीं भेज दिया। तो उसी प्रकार से एटम बॉम्ब का कैसे प्रयोग करना चाहिए, पकड़ लो ये सब नास्तिक लोगों को जो है सब उड़ा दो। लेकिन ये तो केवल अब यू ही कह रहे हैं। देखिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर वस्तु का प्रयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए। जिन वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है उनको करना चाहिए। जैसे कोई कहेगा कोई मादक द्रव्य है, तो उसका से भगवान की सेवा में कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो कई चीजें हैं जो अर्पण नहीं की जा सकती भगवान को, तो केवल जो भगवान को अर्पण किया जा सकता है वही करना चाहिए, अन्यथा ये सब अनावश्यक वस्तुएं हैं, अनिच्छित अनावश्यक वस्तुएं हैं जो केवल उग्र कर्म के उत्पन्न हैं, प्रोडक्ट्स हैं। जब भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं यत करोषि यत दर्शनासि यत जुहोषि तदासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् करोषि मदर्पणम्, कि जो भी तुम करते हो, जो भी तुम खाते हो, पीते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, सब मुझे अर्पण करते हुए करना, तो श्री लोकजीव गोस्वामी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सोचे कि ठीक है मैं कोई अभक्ष्य वस्तु को भगवान को अर्पण करूंगा, क्योंकि भगवान ने कहा है जो भी तुम खाते हो अर्पण करो, तो मैं कुछ मांस आदि कुछ खाऊंगा, तामसिक आहार खाऊंगा, लेकिन भगवान को अर्पण करके खाऊंगा। तो जीव गोस्वामी कहते हैं नहीं, हालांकि यहां भगवान ने कहा है यत करोषि यत अश्नासी, जो भी तुम खाते हो अर्पण करो, यत अश्नासी, फिर भी इसका मतलब है कि जो अर्पण किया जा सकता है उसे ही अर्पण करो, इसकी स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, एक राजा अपने राज में सबको छूट देता है कि जो चाहे तुम वो अपना जीविका जिस पद से चाहो वैसे तुम कर सकते हो, किसी को अध्यापक बनना है, किसी को वैद्य बनना है, किसी को व्यापारी बनना है, सब कर लो, छूट है सबके लिए। क्योंकि राजा ऐसे सबको छूट देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं डाकू बन जाऊं। राजा ने कहा है आप कोई भी कार्य चुन सकते हैं, हाँ, लेकिन राजा के कहने का तात्पर्य है कानून के भीतर। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी राजा की कि कानून के भीतर कोई कार्य को आप करिए, ये तो साफ है। उसी प्रकार से जब भगवान कहते हैं यत अश्नासी कि जो भी तुम खाओगे मुझे अर्पण करो, तो इसका मतलब है कि जो अर्पणीय है, जो अर्पण किया जा सकता है, केवल ऐसे वस्तुओं को अर्पण करो। ठीक उसी प्रकार से जब यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वस्तुओं का प्रयोग हमें भगवान की सेवा में करना चाहिए, तो केवल जो वस्तु भगवान की सेवा में इस्तेमाल की जा सकती है ऐसे वस्तुओं को हमें अर्पण करना चाहिए, जो नहीं किए जा सकते उनको नहीं करना चाहिए। और वैसे भी पहले देखा जाए तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो इन चीजों को हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा बहुत मिल भी जा रहा होगा। अगर हम करेंगे, प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया, भगवान की सेवा में ये माइक्रोफोन डिक्टाफोन का प्रयोग किया जा रहा है, तो उस व्यक्ति को थोड़ा लाभ मिलता है कि नहीं इसका? अब कितना लाभ मिलता है हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ तो, जैसे जो भी असुरगण बोलते हैं ना, तो सरस्वती माता क्या करती है, उनके अर्थ परिवर्तन करके भगवान के चरणों में अर्पण करती है। वैसे शुद्ध भक्त होते हैं असुरों के आविष्कारों को लेकर भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से उस पदार्थ को शुद्ध कर देते हैं। जो जोड़ा जा सकता है उसे जोड़ो, एक उदाहरण दिया ना, जैसे मादक द्रव्य है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई अफीम है, गांजा है, या ऐसे तरह तरह की चीजें हैं, शराब है, कैसे इनका प्रयोग किया जा सकता है? अगर कोई बस कोई तरह है जिससे कि भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, नहीं तो नहीं करना चाहिए।
भक्ति तो किसी चीज से अवलंबन नहीं होती, तो ये सब चीजों की जरूरत बिना इस्तेमाल किए भी भक्ति किया जा सकता है।
वैसे भक्ति करने के लिए क्या चाहिए आपको? माला भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी आपका चित्त चाहिए, शुद्ध चित्त चाहिए, है ना? परंतु भक्ति युक्त वैराग्य पर निर्भर है, युक्त वैराग्य, ये पढ़े थे ना पिछले दो या तीन दिन पहले, युक्त वैराग्य के बारे में हम पढ़े थे। तो युक्त वैराग्य मतलब संसार में जितनी भी चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना। कल $100 वाले नोट जो सड़क पे पड़ा हुआ है उसका भी उदाहरण हम सुन चुके हैं। जब प्रचार के लिए या भगवान की सेवा के लिए को बढ़ाने के लिए हमें मौका मिलता है तो हिचकिचाना नहीं चाहिए दुनिया की कोई चीज का इस्तेमाल करने के लिए। प्रभुपाद जी कहा करते थे, कोई व्यक्ति आके, कोई ऐसे मायावादी लोग होते हैं या वैरागी होते हैं, उनको कोई पैसे देता है तो पीछे हट जाते हैं कि नहीं नहीं हम पैसा नहीं ले सकते, ये माया है। तो प्रभुपाद ने कहा मैं तो हाथ सामने करूंगा, हाँ दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि सही प्रयोग इसका कैसे करना है। ये लक्ष्मी है, इसे नारायण की सेवा में उपयोग करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो उपयोग किया जा सकता है वो करना चाहिए। हमें कपटी नहीं बनना चाहिए, वो हमारे ऊपर है ना। अगर हम वास्तव में केवल नाम के लिए भगवान के लिए कर रहे हैं लेकिन वास्तव में अपने लिए कर रहे हैं तो फिर इसका परिणाम हो जाएगा। हम आग के, देखिए ये भौतिक सृष्टि जो है ये आग के समान है, इसको गलत तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, सही तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आग का बहुत लाभ हो सकता है, अच्छी अच्छी चीजें हम पका सकते हैं, ठंडी के समय में हम गर्मी उष्णता प्राप्त कर सकते हैं, बहुत फायदे हैं आग के। लेकिन अगर आग का प्रयोग कैसे करना है नहीं जानते हैं या अगर हम कोई लापरवाही करते हैं तो आग से बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से युक्त वैराग्य का मतलब है कि अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुञ्जतः, कि जहां दुनिया में जितने भी चीजें हैं उनसे अपने इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त न होकर निर्बंधे कृष्ण संबंधे हम भगवान के सेवा के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो ये भी आग के समान है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे केवल दिखाने के लिए कि हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं लेकिन वास्तव में अपने लिए कर रहे हैं तो हम जल जाएंगे। जैसे अग्नि का प्रयोग ठीक से नहीं करते हैं जल जाएंगे तो हम जल जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति देखता है, हमारी संस्था में भी देखा जाता है, कोई व्यक्ति ज्यादा ही बहुत पैसे से व्यवहार करता है, मन भटक जाता है, उसका मन जो है विचलित हो जाता है, अरे इतना सारा पैसा आ जाता है, कभी किसी को बहुत प्रसिद्धि मिल जाती है फिर वो प्रचार प्रसिद्धि के लिए करने लगता है। प्रचार के नाम में, प्रचार तो अच्छा आवश्यक है लेकिन अपनी प्रसिद्धि के लिए करने लगता है। तो इसलिए भक्त को चाहिए कि वो बहुत सावधान रहे और बहुत ही गहराई से सोचे हर चीज के पीछे कि ये चीजें हमें इस्तेमाल करनी है, क्यों कर रहे हैं, केवल प्रचार के लिए, भगवान की सेवा को बढ़ाने के लिए। वैसे देखा जाए तो सरल जीवन ऊंचे विचार के सिद्धांत के अनुसार हम तो केवल एक पेड़ के नीचे रह के आराम से रह भक्ति कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने ये कृष्ण बलराम मंदिर क्यों बनाया, वृंदावन में आके मैं एक पेड़ के नीचे रह के आराम से अपने भजन कुटीर बना के रह सकता था, लेकिन क्या आप सब आते नहीं आते, इसलिए मैंने ये बड़ा मंदिर बनाया सबको आकर्षित करने के लिए। ये प्रचार का काम है, तो प्रचार के काम में काफी धोखा रहता है, रिस्क रहता है, खतरा रहता है। अगर प्रचार करते समय भक्त सावधान नहीं रहे तो हो सकता है कहीं फिसल जाएगा। तो इसलिए जो चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं वो ठीक है, लेकिन क्या हमारी वो शक्ति है उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे नित्यानंद प्रभु के बारे में कहा जाता था कि वो शराब के अड्डे में जाके भी प्रचार करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साधारण भक्त भी ऐसे कर सकता है। तो कई भक्त हैं, रामानंद राय, वो बहुत कुछ करते थे परंतु अगर उनकी नकल करने जाएं तो संभव नहीं है। तो अपने स्तर को जानना चाहिए। हम जब नियम आग्रह की बात कर रहे थे, आपको याद होगा हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे निम्न श्रेणी के स्तर से लेकर सबसे ऊपर के स्तर तक अनेक स्तर होते हैं और हर एक स्तर में नियम होते हैं। तो अपने स्थान को समझना चाहिए कि मैं किस स्थान में स्थित हूँ, उस हिसाब से हमें भौतिक सृष्टि के पदार्थों का उपयोग करना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का उपयोग हम कृष्ण की सेवा के लिए कर सकते हैं, परंतु कंप्यूटर का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि कंप्यूटर के सामने घंटों तक लोग भक्त लोग बैठे रहते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, इंटरनेट में इधर घूमना उधर घूमना, बहुत कुछ करते हैं, आजकल कई गलत चीजें भी होती हैं। तो ये भी सब जलने की बात है, अग्नि, अग्नि का प्रयोग नहीं करेंगे ठीक से जल जाएंगे।
ठीक है, कंप्यूटर मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो फिर बाहर की जो कंपनी है वो और बनाते प्रोडक्ट करते रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अपना प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तो इसका मतलब हम उनको एनकरेज कर रहे हैं प्रोडक्शन बना बढ़ाने।
समस्या ये है कि अगर आप इस चीज को भगवान की सेवा में इस्तेमाल, वो तो बनाने वाले है ही, चाहे आप खरीदो नहीं खरीदो। सवाल केवल इतना है कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो बुद्धि है कि आप इसका सही तरह से प्रयोग करोगे। एक दो आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम है इस्कॉन में, जहां ब्रह्मचारियों के लिए मोबाइल फोन बंद किए गए हैं। बड़ा सरदर्द हो गया था सबके लिए, और आखिर अभी कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अभी जीवन का ध्येय कृष्ण प्रेम नहीं है, वो दिन कब आएगा जब मोबाइल को त्यागेंगे, वो जीवन का ध्येय, यहां तक बात पहुंच जाती है। तो भगवान की सेवा के लिए कभी कभी आवश्यक होता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। भौतिक शक्ति का प्रयोग करते समय जानना चाहिए ये आग है, अच्छी तरह से या बुरी तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। गुरु के निर्देशन के अनुसार यह यहां बताया गया है, जिसको नहीं इस्तेमाल कर सकती या जिसको इस्तेमाल करने की हमें शक्ति नहीं है, उन चीजों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।
वो भी तो भगवान की शक्तियों में से है।
हाँ, भगवान की शक्तियों में से है, परंतु उनका प्रभाव गलत पड़ता है। जैसे मादक द्रव्य है, वो भी भगवान के पदार्थों में, भगवान की सृष्टि से ही बना हुआ है, लेकिन असर अलग अलग पड़ता है। भगवान की सृष्टि में ही तामसिक पदार्थ हैं, राजसिक पदार्थ हैं, सात्विक पदार्थ हैं, सब भगवान के प्रकृति में ही सब पाए जाते हैं। तो हम केवल सात्विक आहार क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुकूल है। तो फिर भगवान ने राजसिक और तामसिक पदार्थ बनाए ही क्यों हैं, ये बताइए। क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा है ऐसे पदार्थों का उपयोग करने के लिए, उनके लिए बनाते हैं।
लास्ट प्रश्न आ जाएगा, सृष्टि क्यों बनाई,
क्यों बनाई,
हमने इच्छा की इसलिए, ईश्वर बनने की इसलिए हमारे जीवन में,
हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने सृष्टि बनाई। हाँ माता जी, बात यही है कि हमें स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातचित, हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण को भूलना नहीं चाहिए। हम मोबाइल फोन करते करते ऐसा न हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं, ऐसा कोई कार्य कर बैठे जिससे हम कृष्ण को भूल जाएं, रेलगाड़ी हो, कंप्यूटर हो, हमारी गाड़ी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, हम किसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? कृष्ण के लिए। अगर धीरे धीरे से हम देख रहे हैं कि अभी ये अभी हमारे लिए हम कर रहे हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। मेरा स्वयं का उदाहरण मैं दे सकता हूं। कई साल पहले मैंने सोचा था कि क्योंकि अखबारों में, समाचार पत्रों में ऐसे ऐसे लोग लिखते हैं, ऐसे लेख लोग लिखते हैं जो बिल्कुल नास्तिकवाद, भोगवाद को आगे बढ़ाते हैं और भक्ति के सिद्धांतों को, आध्यात्मिक जीवन और वैदिक संस्कृति को नकारते हैं, अवहेलना करते हैं, बस मजाक उड़ाते हैं। तो हमने सोचा कि बहुत आवश्यक है कि भक्तों को भी लिखना चाहिए लेख। तो अगर लिखना है तो कैसे समझे कि ये लोग कैसे लिखते हैं, इनकी लिखने की जो पद्धति है, स्टाइल है, वो हमें देखना चाहिए और देख के फिर पता चलना चाहिए कि हम कैसे लिखें, भक्ति के सिद्धांतों को अखबारों में कैसे छापें। तो फिर हमने अखबार मंगाना शुरू कर दिया। तो फिर एक दिन आया कि हम सोचने लगे कि अरे सुबह सुबह हो गई, हम माला करने बैठे हैं, अरे अखबार आया कि नहीं, आया कि नहीं। हमने सोचा चलो ये मतलब है अभी अखबार बंद कर देना चाहिए। तो अखबार बंद कर दिया और देखा कि चलो परीक्षा लेते हैं अपनी कि अखबार के बिना रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं। तो भक्त को ऐसे हमेशा अपनी परीक्षा करनी चाहिए, देखना चाहिए कि जिस चीज में प्रचार के लिए मैं ले रहा हूं, लेकिन कहीं प्रचार के नाम से लेकर कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस वस्तु में आसक्ति हो जाए। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, इसलिए एक उदाहरण हमने दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। कहां पर थे हम? हाँ अच्छा, यहाँ इसको जरा घुमाएंगे आप। उत्साह, तो जो भी उत्साह के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा है सार रूप में यहाँ इसको हमने प्रस्तुत किया है। उत्साह के बिना हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। यहां उत्साह का अर्थ है कि हमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, सदगुरु के निर्देशन में इन कार्यों को कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनाना चाहिए। उदाहरण डिक्टाफोन। कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। इस जानकारी से कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ाई करना बहुत लाभदायक होता है। हम जब एक पन्ना या दो पन्ने पढ़ते हैं तो फिर उसका सार, उसका निचोड़ जो है उसको ऐसे अलग से लिखेंगे और फिर ये हमारे नोट्स हमारे खाते किताब वगैरह में रखेंगे तो बहुत लाभ होगा। और इसको लिखने के लिए भी काफी सोचना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है निचोड़ क्या है, है ना? तो इसलिए बार बार पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं उसके बारे में, चिंतन करते हैं। हाँ, बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा? बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। ठीक है, आप सबने लिख लिया ना? अब भक्ति विनोद ठाकुर जी की टीकाएं जो हैं, हमसे चर्चा तो करना चाहते हैं लेकिन इतने विस्तार में करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि मुझे लगता है कि उसमें बहुत समय चले जाएगा और बहुत रसमय है वैसे देखा जाए तो। लेकिन बहुत गहराई में बात जाती है और फिर समय भी कम है और कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग आ रहे हैं इतनी बातें कैसे हम सब याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि मन में तनाव हो जा रहे ये सब बातें, ये भी है ये भी है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं आज ये पढ़ लेते हैं, कम से कम श्लोक हो जाए, फिर भक्ति गुरु ठाकुर के जो टीकाएं हैं उनका सार रूप में हम कल अलग अलग इसमें कर लेते हैं। उत्साह के लिए थोड़ा कुछ मैंने यहाँ चार्ट में बतलाया है और अन्य जो है उनके बारे में कल हम चर्चा कर लेते हैं, आज ये सारा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। घुमा लीजिए। उत्साह के बारे में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की टीका वैसे बहुत लंबी है, केवल हमने प्रयास किया कि बहुत निचोड़, बिल्कुल उसका निचोड़ केवल यहां रखें। उत्साह के ऊपर टीका करते समय वो निरुत्साह की टीका करते हैं, निरुत्साही होना है। उत्साह नहीं होगा तो क्या होता है और क्यों होता है, इसकी बात उन्होंने की है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति का उत्साह नहीं होता तो सेवा में लापरवाही होती है, नेग्लिजेंट। और ये लापरवाही जो है तीन प्रकार की होती है, एक है निष्क्रियता, दूसरा है उदासीनता और तीसरा है विरक्ति, जो वैराग्य है। परंतु ये विरक्ति या वैराग्य वो ज्ञान योगी की विरक्ति है, भौतिक कर्मों से उसे विरक्ति तो हो गई परंतु कोई श्रेष्ठ सक्रिय उपाय उसे नहीं मिला है, इसलिए उसके हृदय में बस वो विरक्ति ही रह जाती है, विरक्ति के अलावा कुछ नहीं रह जाता। सकारात्मक कोई एक ध्येय उसके पास नहीं रहता, इसलिए उसे निराकार ब्रह्म तक ही सीमित रहना पड़ता है, तो फिर वो भक्ति में उत्साही नहीं हो सकता है। जहां तक निष्क्रियता की बात है, ये दो प्रकार के हैं, एक है आलस और दूसरा है कार्य करने की इच्छा न होना। साथ साथ उदासीनता ये असावधानी की वजह से उत्पन्न होता है। हम रोज सुबह क्या कहते हैं हरि नाम के बारे में? हाँ बताइए, हाँ क्या बताते हैं ध्यानपूर्वक जप के बारे में? ध्यानपूर्वक जप न करना भी एक नाम अपराध माना जाता है। 10 अपराधों में आता है। हाँ ये 11वां है, ये अन्यों की जननी है। तो जो ध्यानपूर्वक जप नहीं करेगा तो फिर उसका उत्साह कम हो जाएगा भक्ति में। अन्य कार्यों के लिए उत्साह बढ़े भले या न बढ़े, परंतु भक्ति में उसका उत्साह कम हो जाएगा। जो उत्साह से भक्ति कर रहा होगा वो अवश्य उत्साह से जप करेगा, ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कम से कम करेगा, जप के समय आलस नहीं दिखाएगा। सूक्ष्म अंतर होगा। आलस में क्या होता है, करना चाहते हैं फिर भी अरे कौन उठेगा, उठ नहीं पा रहे, अरे हम जानते हैं जाना चाहिए करना, लेकिन इसमें इच्छा ही नहीं, मैं जाना ही नहीं चाहता, मंगल आरती में जाना ही नहीं चाहता, वहां हाँ जाना चाहिए लेकिन अरे शरीर पर ठीक है चलो सो जाओ, चलो आलस आएगा, जाना चाहते हैं लेकिन वो दृढ़ता नहीं एकत्र कर पा रहे, दूसरे में इच्छा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं, सूक्ष्म अंतर है।
पहला वाला पॉइंट निरुत्साह शुरू किया ना, वो पॉइंट के बाद जो निरुत्साह निरुत्साह शुरू किया,
हाँ
मैं सुन नहीं पाया।
अगर उत्साह भक्ति में नहीं होगा तो फिर उत्साह से सेवा या हमारे भजन पूजन आदि में लापरवाही आ जाएगी। लापरवाही तीन प्रकार के होते हैं, निष्क्रियता, उदासीनता और विरक्ति। तो ये जो जप के समय हम ध्यान नहीं देते हैं, इसको प्रमाद कहते हैं। ये भी एक प्रकार का पागलपन भी है, असावधानी है। हम इतने गंभीरता से हरि नाम को नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है। हाँ, आगे घुमाइए। फिर आगे श्रद्धा और उत्साह का संबंध क्या है, इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। वो कहते हैं कि काम से कर्म मार्ग ही प्रेरित होते हैं, कर्म मार्ग में चलने वाले लोग प्रेरित होते हैं। विरक्ति से ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग प्रेरित होते हैं, और श्रद्धा से भक्ति उत्पन्न होती है। तो काम से कर्म उत्पन्न होता है, विरक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, और श्रद्धा से भक्ति उत्पन्न होती है। तो उत्साह श्रद्धा का प्राण है। उत्साह श्रद्धा का, बिना उत्साह श्रद्धा का कोई अर्थ नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हाँ मुझे श्रद्धा है, लेकिन ये केवल कहने की बात है। अगर श्रद्धा है तो सेवा करने के लिए उत्साह क्यों नहीं है? अगर उत्साह नहीं है सेवा करने के लिए भगवान की, इसका मतलब है श्रद्धा बहुत कमजोर है, श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा का लक्षण है उत्साह। उत्साह के बिना श्रद्धा कोई मायने नहीं रखता। कहने के लिए बस हम श्रद्धावान हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं श्रद्धा का प्राण है ये उत्साह। और वो चेतावनी देते हैं नौसुखिया भक्त को कि श्रद्धावान तुम्हें होना चाहिए, और अगर अधिक श्रद्धा को बढ़ानी है तो उत्साह भी होना चाहिए। उत्साह से कार्य करेंगे तो प्रगति करेंगे। किस प्रकार से प्रगति करेंगे? वो कहते हैं दो प्रकार की भक्ति है, अनिश्चिता भक्ति और निश्चिता भक्ति। वास्तव में ये भजन क्रिया के स्तर में आते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में आप ये पढ़ेंगे, पहले आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है जिससे कि फिर हम भक्तों के संग में आने के लिए योग्य हो जाते हैं। भक्तों के संग में आते हैं तो भक्त लोग हमें भजन क्रिया में लगा देते हैं, भगवान की सेवा के कार्यों में हमें लगा देते हैं। तो भजन क्रिया के दो स्तर होते हैं, अनिश्चिता भजन क्रिया और निश्चिता भजन क्रिया। अनिश्चिता भजन क्रिया में हम थोड़ा बहुत चंचल रहते हैं, हमारी भक्ति उतनी स्थिर नहीं होती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अनिश्चिता भजन क्रिया के भी विभाजन किए कि अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके भी अलग अलग स्तर होते हैं, लेकिन माधुरी कादंबिनी में, लेकिन इनकी चर्चा अब हम नहीं करेंगे। तो खैर, अनिश्चिता भक्ति या भजन क्रिया के कई स्तर होते हैं, और इनको पार करके फिर व्यक्ति निश्चिता भक्ति, निश्चिता भजन क्रिया में स्थित होता है। निष्ठापूर्वक जब भजन क्रिया की जाती है, भजन भक्ति के कार्य किए जाते हैं, तो उसे निष्ठिता भक्ति कहते हैं। भक्ति अब वास्तव में स्थिर हो जाती है। सुबह को भागवत क्लास के पहले मंगलाचरण में हम भागवत कौन से श्लोक कहते हैं? कौन सा श्लोक है वो? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। ये नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठावान भक्ति, जिसमें भक्त डावाडोल नहीं हो जाता है, डगमगा नहीं जाता अपनी साधन भजन में, निष्ठापूर्वक करते रहता है, दृढ़ता से करता है। तो अगर हमें अनिष्ठता भक्ति से निष्ठता भक्ति करनी है तो इसके लिए श्रद्धा चाहिए। जैसे जैसे श्रद्धा की वृद्धि होती है, श्रद्धा बढ़ते जाती है, वैसे वैसे हमारे श्रद्धा के परिपक्वता के साथ साथ हम धीरे धीरे अनिश्चिता भक्ति से निश्चिता भक्ति में चले आते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उत्साहपूर्वक भक्ति करने से हम शीघ्र ही अनिश्चिता भक्ति से निश्चिता भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं, परंतु हमारी सेवा में उत्साह नहीं होगा तो अनिश्चिता भक्ति से ही आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, हम वहीं पर रहेंगे, निश्चिता भक्ति में नहीं जाएंगे, हमारी भक्ति निष्ठावान नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, श्रद्धा मतलब श्रद्धा जब बढ़ती है, श्रद्धा इस तरफ बढ़ती है, जैसे बढ़ती है तो हमें अनिश्चिता भक्ति से ले जाती है कहां? निश्चिता भक्ति में। दोनों में अंतर क्या है? श्रद्धा का अंतर है ना, और जैसे उत्साह बढ़ेगा श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे श्रद्धा बढ़ेगी उत्साह बढ़ेगा और हम प्रगति करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। ये हुई बात उत्साह की, अब रही बात निश्चय, ये दूसरा गुण है, परंतु तात्पर्य में निश्चय के पहले प्रभुपाद जी धैर्य की बात करते हैं, इसलिए तात्पर्य के इस भाग को छोड़कर इसी परिच्छेद में आप आगे चलिए, अंतिम तीन चार लाइन है, इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है, वहां पढ़िए। विश्वस्त मतलब यहां वास्तविक निश्चय का समर्थन हो रहा है, उत्साह निश्चया तो निश्चय।
भक्त सोचता है अवश्य रक्षिवे कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है।
ठीक है, यही विश्वास मतलब वास्तव में यही निश्चय कहलाता है। निश्चय शब्द का तात्पर्य धैर्य, निश्चय तो यहां वास्तव में निश्चय, निश्चय का वर्णन है इन तीन चार वाक्यों में। ठीक है, कहीं विश्वस्त कहा गया है, कहीं धैर्य कहा गया है, लेकिन यह चर्चा हो रही है निश्चय की, अवश्य रक्षिवे कृष्ण। हाँ, इसलिए उन्होंने नीचे धैर्य लिख लिया है। अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं है ना, जब देख लेंगे। हाँ, निश्चय के बारे में। हाँ, तो निश्चय क्या है, इसके पीछे देखिए कुछ है नहीं। कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफलता के लिए सहायता देंगे, यह है निश्चय कहलाता है। निश्चय के बिना समर्पण संभव नहीं है। निश्चय और विश्वास इन दोनों का भी संबंध होता है। निश्चय और विश्वास का संबंध कैसे है, कौन समझाएंगे?
उनको विश्वास होगा तभी निश्चय, हमें विश्वास होगा भगवान हमारी मदद करेंगे,
हाँ,
तभी हम कोई हम भगवान के ऊपर रह सके, नहीं तो नहीं देखते। और अगर तो अंदर विश्वास नहीं है तब तक हम ये निश्चय कर ही नहीं पाएंगे कि चलो ये काम करते हैं।
बहुत अच्छा, समझ लीजिए एक बच्चा है, ऊपर खड़ा है कहीं, नीचे पिता खड़ा है, पिता कहते हैं कूदो मैं पकड़ लूंगा, बच्चा सोचता है अरे नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, बच्चा जानता है कि पिता तो पकड़ लेंगे तो कूद जाता है, निश्चय है उसका कि मुझे कुछ नहीं होगा, कूद जाता है, इसे निश्चय कहते हैं। पिता की शक्ति में विश्वास, प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जब एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ चलता है तो कोई बड़ा लड़का है जो उसको सताता है, लेकिन पिता के साथ होता है तो वो बिल्कुल निडर हो जाता है कि अब मेरे पिता हैं, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, निश्चय होता है पिता के शक्ति में। उसी प्रकार से अवश्य रक्षिवे कृष्णा, भक्त को विश्वास होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, अवश्य करेंगे, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, मुझे भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक है वो देंगे, इसलिए वो निश्चय हो जाता है, उसके अंदर निश्चय की भावना जागृत हो जाती है।
एक तरीके से यहाँ इस संदर्भ में विश्वास का पर्यायवाची हो गया।
हाँ, ठीक है, तो अभी इसी परिच्छेद के ऊपर जाते हैं। धैर्य, ये सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक, वो परिच्छेद पढ़िए।
ये सारे कार्यकलाप धैर्यपूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावनावन में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। निसंदेह यह कृष्ण भावनावन आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन क्योंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्यपूर्वक करते रहे अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इसमें उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अभी तो गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्यपूर्वक पूरा करना चाहिए। कृष्ण भावनाधारित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा।
नहीं, ठीक है, वो तो आगे हमने पढ़ लिया। तो ये धैर्य, धैर्यात् धीरज होना चाहिए, धीर, तो भक्त धीर है, और भक्ति विनोद ठाकुर जब धैर्य इस गुण की व्याख्या करते हैं तो वास्तव में वो वाचो वेगम पहले श्लोक की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि धैर्य होना, धीर होना, या धैर्य का गुण होना, इसका मतलब धीर होना चाहिए। धीर होना मतलब वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, ये सब विषहेत धीर है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस धैर्य, इस गुण की व्याख्या पहले श्लोक की को बताते हैं कि ये है इसका तात्पर्य। तो वाचो वेगम आदि हम तो सुन ही चुके हैं। तो ये है भक्ति विनोद ठाकुर की टीका धैर्य के ऊपर, और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि धैर्य रखना मतलब हमें विश्वास होना चाहिए कि आज नहीं तो कल अवश्य हमें इसका फल मिलेगा। आज ही मिलना है, और आज नहीं मिला तो हम भक्ति छोड़ देंगे, ये ठीक नहीं। ऐसे करने से भक्ति में सफलता हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें सब्र करना चाहिए, जानना चाहिए कि सही समय पर सब मिल जाएगा। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर इसकी व्याख्या करते हैं। ऐसे कोई आपको उदाहरण याद आते हैं भक्तों के, जिन्होंने बहुत धीरज रखा, जब उनको बताया गया कि उनको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा? सुदाम, मुकुंद, बहुत अच्छा, हम भी वही सोच रहे थे। बताइए मुकुंद का क्या उदाहरण, क्या लीला है? क्यों खुश हुए? हाँ, मिलेगी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। केवल थोड़े लाखों जन्म, 10 लाख जन्म केवल इंतजार करना पड़ेगा बस, लेकिन उसके बाद अवश्य मिलेगा, मिलेगा निश्चित, केवल 10 लाख जन्म। तो ये मुकुंद की कथा है। मुकुंद बहुत नृत्य करने लगे, उत्साहपूर्वक बहुत कूदने लगे, केवल 1 कोटि, केवल 10 लाख, केवल 10 लाख। तो हमें भी धैर्य रखना चाहिए। हाँ, आगे पढ़िए। अब तत्त कर्म प्रवर्तन, इसकी चर्चा होगी।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तन, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाए। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत है, अवैध मैथुन, मांसाहार, दूध क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन। इन चारों का बहिष्कार, भक्तों को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में सिद्धता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतएव श्री रूप गोस्वामी की संस्कृति है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मनुष्य को वैधिक भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां नियम भी है, तथा प्रतिदिन जपमाला पर 16 माला का जप करना, इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है।
तो ये चौथा गुण है, षड गुणों में से तत्त कर्म प्रवर्तन। तो तत्त कर्म मतलब वो कार्य हैं जिनसे कि उत्तमा भक्ति का अनुशीलन किया जाता है। तत्त कर्म क्या है? तत्त कर्म कौन से कर्म है?
वो कार्य जिनसे उत्तम भक्ति
अनुशीलन किया जाता है। प्रवर्तन मतलब पालन करना, तो तत्त्व कर्म प्रवर्तन मतलब उन कार्यों को करना जिनसे कि शुद्ध भक्ति की प्राप्ति धीरे धीरे हो सकती है। तो ये कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक, विधि और निषेध। जैसे नकारात्मक जो है यम है, चार नियमों का पालन करना इत्यादि, और नियम है जो सकारात्मक हैं, विशेष करके वैधि भक्ति में, जैसे कि रोज 16 माला कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, श्रीमद् भागवत का पाठ सुनना, भगवान का दर्शन करना, चरणामृत का सेवन करना, और कितने सारे ऐसे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने ऐसे भगवान कृष्ण के आदेश उपदेशों के अनुसार 64 मुख्य ऐसे यम नियमों का उल्लेख किया है, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में पाए जाते हैं। जब आप भक्ति रसामृत सिंधु में आगे बढ़ेंगे तो ये 64 नियमों का वर्णन आप पढ़ पाएंगे। इसमें विधि निषेध दोनों हैं, यम नियम दोनों हैं, और ये विविध प्रकार की सेवा होती है भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और फिर अंत पांचवा है संग त्याग। संग त्याग में भी भक्ति विनोद ठाकुर की काफी लंबी टीका है, वो कल चर्चा करेंगे, लेकिन आज यूं ही पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो संग त्याग का मतलब है किस प्रकार के संग की बात यहाँ की जा रही है। असत संग को त्यागना चाहिए। महाप्रभु ने बताया है कि तरह तरह के असत संग होते हैं, इनके बारे में हम कल और विस्तार में चर्चा करेंगे। इन विभिन्न प्रकार के असत संगों को हमें त्यागना चाहिए, और ये वैष्णव का व्यवहार होता है। असत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि असत्संग से बचने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, भक्तों के बीच में रहना, भक्त सने वास। अगर भक्तों के संग में वास करेंगे जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो फिर अभक्तों के संग करने का अवसर बहुत कम मिलेगा हमें। इसलिए अधिक से अधिक भक्तों का संग करना चाहिए। व्यस्त रह सकता है व्यक्ति, भक्त भगवान की सेवा में पूरे दिन रह सकता है। वास्तव में भले अन्य लोग ऊब जाएं उनके कार्यों से, लेकिन भक्त कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं ऊब गया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, कुछ करने के लिए है नहीं, इतना सब है भगवान के लिए करने के लिए। इसकी कोई सीमा नहीं है। तो भक्त कभी उब नहीं जाते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है भगवान के भक्तों में रहकर सेवा करने के लिए। तो ये है संग त्याग। और फिर छठा, सतो वृत्ते। सतह सताम या सतह मतलब जो सत मार्ग में चलने वाले हैं, जो भक्त हैं, जो पूर्ववर्ती महाजन हैं, और वृत्ति मतलब उनके उनके जो कार्य हैं, उनके पद चिन्हों में चलना। हाँ तो पढ़िए। चलेगा, विधि निषेध और विधि विधान एक ही है, कोई बात नहीं। हाँ,
भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप, दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के दोनों तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कर्मश नहीं होता, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है। अर्थात यह शुद्ध सत्व गुण का या रजो तथा तमो गुणों के कर्मश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाए और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवतम पढ़े, कीर्तन करें आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं, यह सतोवृत्ति है। अर्थात गुरु पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है, जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया।
तो सतोवृत्ति क्या है? पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना। कैसे? जो पूर्ववर्ती महाजन रहे हैं, उन्होंने अपना सारा समय भगवान की सेवा के लिए बिताया है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए उनके पद चिन्हों में चलते हुए? सारा समय कृष्ण के लिए बिताना चाहिए। कैसे? क्या उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने? फिर भक्ति शास्त्री में आना चाहिए क्लास में, फिर घर जाके फिर से पढ़ाई करनी चाहिए, फिर ऐसा सारा दिन निकल जाता है। तो आप लोग आदर्श उदाहरण है सतोवृत्ति, कुछ समय ही नहीं आपको इधर उधर माया के लिए। सुबह जल्दी उठ के कब दिन खत्म होता आपको समझ में भी नहीं आता होगा, बिल्कुल सांस लेने के लिए भी समय नहीं। तो माया को प्रवेश करने के लिए कोई मौका नहीं। तो ठीक है, 6:30 बज गए, अब यहीं पे समाप्त करते हैं, कल आगे बात को बढ़ाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। गौर प्रेमानंद।